اگلی آیت، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ تم آوازوں کو اپنی بلند کرو نبی کی آواز پر، یعنی نبی جب بولیں تو تم ان سے اونچا نہ بولو. ولا تجہروا بالقول، اور نہ تم پکارو بات کو، کیسے؟ کا جہری بعدکم لبعدن، جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو آپس میں، یعنی نبی کو پکارتے وقت اتنا انفارمل قسم کا سٹائل نہ اختیار کر لیا کرو جیسے آپس میں رکھتے ہو. اشارہ ہے اس میں کچھ عربیوں کی طرف جو دیہاتی تھے اور باہر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ یہ آیت اتری. صحابہ کرام نے کبھی اللہ کے نبی کو یا محمد نہیں کہا. پورے قرآن میں 4 دفعہ اللہ کے نبی کا نام موجود ہے لیکن یا محمد کہیں نہیں کہا. یا رسول اللہ ہے صحابہ کہتے تھے، یا نبی اللہ بھی کہتے تھے، لیکن نام لے کے نہیں کہتے تھے. بلکہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ان قوموں کا عمل جنہوں نے اپنے نبی کو کہیں یا موسیٰ کہا، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ پکار اپنے رب کو ہمارے لیے. جاہل قومیں اپنے نبیوں کے نام پکارتی. ہم تو اپنے باپ کا نام نہیں پکارتے، نانا دادا کا نہیں پکارتے، نبی کا تو مقام بہت بلند ہے. تو لہذا ہمیں اللہ کے نبی کی عزت کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی. الحمدللہ اس پہ 2 کتابیں میں نے پچھلے سے پچھلے ربیع الاول میں پڑھائی تھی. اقبال سیریز جو تفہیم السنہ سیریز ہے اس کے اندر آتی ہیں. ایک حقوق رحمت للعالمین، 8 بڑے بڑے حقوق تھے جس کے اندر پھر اور کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. میرا خیال ہے ویب سائٹ پہ ابھی بھی ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں، یہ بھی ایک بک پڑھی ہوئی ہم نے. پھر اسی طرح ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھی. اور پھر سیرت پہ تو بہت ساری بکس ہیں، تو ان بکس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور ہم خود سے اب یہ سوال کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق ہے. دیکھیے، کسی سے تعلق نہ ہو تو ملاقات کا مزہ ہی نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو دل چاہتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں، ساری چاہیں گے نا. تو آج بلا لیں اللہ کے نبی کو اپنے اپنے گھروں میں. ایک لمحے کے لیے سوچیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئیں، اف پروفٹ وزٹس مائی ہوم، تو میں خوش ہوں گی یا گھبرائی جاؤں گی؟ کیا اللہ کے نبی میرے گھر آ کے خوش ہوں گے؟ کیا میرے گھر میں آ کر ان کو خوشی ہوگی؟ وہاں سے اٹھنے والی آوازیں، وہاں وہ چیزیں جن کی موجودگی میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں، کیا نبی خوش ہوں گے؟ تو اس رمضان سے پہلے تھوڑی صفائی کر لیں. ہر وہ چیز جو نبی کو اچھی نہیں لگے وہ ہمیں کیسی اچھی لگے گی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نافع کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، دور سے بانسری کی آواز آئی. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو، فلیوٹ. تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دی اور اپنے غلام سے کہا کہ جب آواز آنی بند ہو جائے گی تو مجھے بتا دینا. کچھ دور جا کر جب آواز بند ہو گئی تو غلام نے بتا دیا. انہوں نے انگلیاں نکال دی اور فرمایا کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو وہاں سے بانسری کی آواز آئی تھی، تو انہوں نے بھی بالکل ایسا ہی کیا تھا. ہمارا نبی جس گانے اور میوزک کی آواز کو سن کر کانوں میں انگلیاں دے لے، آج مجھے بتائیے، دکھ کے ساتھ کہوں گی، ہمارے گھروں سے وہ آوازیں کس کس رنگ سے اٹھتی ہیں. پہلے تو لوگ تھے نا، بٹھا کر دیکھتے تھے ایسی محفلوں کو، جماتے تھے. آج بھی لائیو کنسرٹس تو کم ہی ہوں گے، ہمارے تو ایک اشارے پہ جتنے مرضی بول اٹھے. کہیں وہ خبروں کے نام پہ، کبھی بچوں کے کارٹون کے نام پہ، کبھی وہ ایڈورٹائزمنٹ کے نام پہ. اور سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے سیل فونز میں وہ بجتا. ایک کسی نے چھوٹا سا میسج بھیجا تھا کہ آپ کو تھا کہ پاپ سنگر ایک ایسا ہے جو صرف 1 یا 2 منٹ کا سلاٹ دیتا ہے، اور اتنی اس کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری مسجدوں میں بھی آ کے گا سکتا ہے. تم بتاؤ وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تمہارا بجنے والا فون ہے. عین ادھر مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ادھر آپ کا وہ میوزک بج جاتا ہے. کتنی آوازیں ایسی. اور مائیں اپنے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتی ہیں، لو کھیلو، اور وہ اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں ان چیزوں کے کہ اللہ کی بنا. इसी तरह हर गलत आवाज इसमें आएगी। तो हमारे घरों में अब अपने आप से सवाल कीजिए, आज एक और आपको होमवर्क मिल जाता है, मेरे घर में क्या क्या ऐसी चीज है जो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आए तो उनको अच्छी नहीं लगेगी। निकाल देते हैं, क्या बड़ी बात है, अल्लाह के नबी से प्यार भी तो है ना। अब वो यूब अल अंसारी तो तड़प रहे थे कि अल्लाह के नबी मेरे मेहमान बने। मदीना का तो एक एक शख्स खड़ा था, रास्ता देख रहा था कि शायद वो हमारे घर ही रुक जाए। सबने पढ़े में ये वाकयात। लेकिन आज मैं और आप कैसे ख्वाहिश कर सकते हैं, हमें यकीन है कि अल्लाह के नबी आएंगे। और अफसोस क्या होता है कि जब उसी नबी के नाम पर नाते फिल्मी गानों की धुनों पे पड़ी और बोली जाती हैं, और बेपर्द औरतें स्टेजेस पे बैठकर जब ऐसी चीजें गाएं और बोलें, और फिर ये गुमान करें कि नबी आ गए हैं और पकड़ो और बैठो, और अल्लाह रहम कर अल्लाह के नबी का जो नाम है, किसी एक जगह और किसी से सुना कि कुछ लोग सिस्टर जमा थी किसी भी मौके पे होंगी, तो वहां वो कुछ नाते पढ़ रही थी, और नातों को सुनकर जो जहन में इमेजिनेशन आ रहा था ना, वो क्या था कि एक दूल्हा है और वो आ रहे हैं और उनके सर पे सेहरे हैं, आओ आओ सखियों फिलाओ फूल के, पता नहीं क्या उसने था कि राज दुलारा आवत है, आमना का लाल आवत है, दूल्हा बनाऊ तुझको, नाउसुबिल्ला सुम नाउसुबिल्ला। क्या अल्लाह के नबी का ये मुकाम है? आप सोचिए अल्लाह के नबी कितने बड़े थे हमसे, और कितना हमारे दिल पे उनका रोब और मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन अब मैं चंद बोल बोलूं तो आप खुद ही समझ जाएं, और मोहब्बत में करते हैं, नसंजी में करते हैं, कोई गुस्से में या नफरत में नहीं करता, पता ही कोई नहीं कि उसका मुकाम क्या। और फिर कहते हैं अब आ गए हैं, हमने बुलाया तो अब अंदर आए हुए। आप मुझे बताइए कि हमारे खानदान का कोई बड़ा शख्स आए तो हम खड़े होकर उसके लिए कुछ गाना शुरू हो जाएंगे, या हम उनको देखें और अंदर बुलाने से पहले हम उन पे फूलों की पत्तियां डालेंगे? यानी समझ कम रखते हम। तो नबी के साथ ताल्लुक को दुरुस्त करना, देखिए छोटी बात नहीं है। मैं आज आपको बहुत लच्छेदार बातें सुना के खुश भी करके जा सकती थी, लेकिन आदत ही नहीं है किसी को खुश करने की, क्योंकि ये दिल है कि ये रब का पैगाम उसके बंदों को मिल जाए। कल वो हुज्जत ना बन जाए कि आए थे हमारे पास बस लोरियां सुना के और फजाइल और वसाइल बता के चले गए, वाह ये पढ़ लो तो इतना सवाब, इसके साथ जन्नत में महल, उसमें महल, आपने मेरा गिरेबान पकड़ लेना कल क्यामत के दिन, अगर मैंने आपको ताल्लुक बिर रसूल की असल ना बताया। करें क्या, कोई किताब जो आपके घर में है, नेट से बहुत सारी बुक्स आप मिल जाती हैं, पीडीएफ्स हैं, कोई एक किताब पढ़िए कि नबी सल्लम से मोहब्बत के क्या तकाजे हैं, बस फिर उसको एक एक करके इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करते जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। और यहां देखिए अंतह बत आमालुकुम, तुम्हारे अमल ना जाया हो जाए। ये कौन से अमल है, लिखिए रमजान के अमल, तरावियां इतनी लंबी लंबी, इतने लंबे रोजे, सहरियों में दिल भी नहीं चाहता तो खाओ, देखो ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमल जाया हो जाए। वन तुम ला तशरून, और ऐसा ना हो कि तुम्हें शोर भी ना हो, बिल्कुल तुम ऐसी बेवकूफी में नेकियां अपनी जाया कर दो जैसे बच्चों के हाथों से प्लेट गिर जाती है, खाना खाते हैं आधे चावल नीचे गिरा देते, उनको शोर ही नहीं होता बेचारों को, तो कहीं तुम भी अपनी नेकियों को इसी तरह से जाया ना कर दो। फिर अगली आयत में फरमाए नल्लज़ीना यगुद्दूना स्वातहुम मिंद रसूलिल्लाह, और वो लोग जो पस्त रखते हैं अपनी आवाजों को अल्लाह के नबी के सामने, उलाइकल्लज़ीनम तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा, ये हैं वो लोग के जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिए। पहले तो दुआ करें अल्लाह हमारे दिल ऐसे बना दे। क्या मिलेगा इनको, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, इनके लिए मग़फ़रत भी है और अजर अज़ीम भी है। अब ये दिलों को परखना और ये क्या कहानी है, यानी ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से डाली हुई आजमाइशों पर पूरे उतरते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल इनकी जिंदगी में आ जाए कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, खुश हैं कि तूने दी है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह को साबित करते हैं कि अल्लाह हम तुझसे प्यार करते हैं और हम तेरी हर पुकार पर लब्बैक कहेंगे। और ये कौन थे, ये अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी थे, जब उनको हुक्म होता था अल्लाह के लिए निकलने का चल पड़ते थे अल्लाह के हुक्म से। तो लिहाजा अपने आप को चेक करें, क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चल पड़ती हूँ, और अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद देखिए कुछ अखलाकी खराबियों का तस्करा आगे आ रहा है, इन अल्लज़ीन युनादूनक मिन वराइल हुजुरात अक्सरहुम ला याकिलून, बेशक वो लोग जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, इनमें से अक्सर बेअकल है। बिल्कुल जहन में एक गंवार शख्स आ रहा है, बाहर खड़े होकर पुकारते थे और सहाबा कभी नहीं पुकारते थे। आपको पता है नमाज का भी वक्त हो जाता था ना, और अल्लाह के नबी का हुजरा पास था। आपको पता है आज भी अगर आप देखें तो जो आपका रोजा मुबारक है, ये आपकी जिंदगी में हजरत आयशा का हुजरा था, तो मस्जिद से जुड़ा हुआ है ना। आप अपने हुजरे में होते थे, सहाबा बाहर खड़े होते थे। सोचें रियाजुल जन्ना के इर्द गिर्द की जगह वही थी ना मस्जिद, माशाल्लाह अब तो इतनी फैल गई। ये नहीं करते थे कि अल्लाह के नबी को, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए जी नमाज पढ़ाए, खामोश बैठते। और एक आध दफा ऐसा होता कि अल्लाह के नबी बाहर ना निकलते। एक दफा आपने तरावियां पढ़ाई, एक दिन पढ़ाई, दूसरे दिन भी पढ़ाई, तीसरे दिन लोग फिर आके जमा हो गए तरावी पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी बाहर ही नहीं निकल रहे। अब क्या करें, चुप जाओ बुलाओ, मेरे में जरूरत नहीं है। फिर खांसी करते, खंगूरे मारते, जरूरत नहीं थी कि जाएं। इतना प्यार करते थे अल्लाह के नबी से, इतने करीब थे, और आप इतने इजी गोइंग थे, लेकिन सहाबा कभी बदतमीज नहीं हुए अल्लाह के नबी के सामने। अल्लाह ताला उनकी तारीफें फरमाते हैं, और इसके बरक्स वो दूसरे लोग हैं वो खड़े रहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वले वन्नहुम सबरू, और अगर वो सबर ही कर लेते, हत्ता तखरुज इलैहिम, यहां तक कि खुद निकल आते उनके पास, लकाना खैरुल्लहुम, जो उनके हक में बेहतर होता। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला तो खूब बख्शने वाला है, चलो जो हो गया उसको माफ कर देगा। क्या पता चला इसमें कि अदब, देखिए इस्लाम जो ना ये दीनुल अदब है, गुड मैनर्स। अब मैं आपको इसको अपने ऊपर और हम अपने हालात पे लेके चलते हैं, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आप में से अक्सर माई ही है ना, और बच्चों की तरबियत की बात किए बगैर हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं। बस माए अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का तो छोड़िए, अपना अदब भी नहीं सिखाती। बच्चे शाउट करते हैं, बच्चे चीखते हैं, मैंने बच्चे को माँ के मुंह पे थप्पड़ मारते हुए भी देखा, लेकिन माएं कुछ अहमियत ही नहीं लेती। कहती ये बच्चा है, गुस्से में है, इसको नींद आ रही है, भूख, तो एक इसको ये है हक के वो माँ के आगे बोले। बाप की इज्जत नहीं करना सिखाती। घर में नानी दादी बड़े लोग हैं, इज्जत ही नहीं है। पहले बड़े को देखकर लोग खड़े होके उसका हाथ थामते थे, आओ बैठो। आज इल्ला माशाल्लाह कुछ घर ऐसे हैं आज भी, लेकिन अमूमी तौर पे हमारे बच्चे बेनियाज हो गए। बाप घर में जब आते थे तो माएं बच्चों को क्या फील कराती थी, आप अपना ही याद कर ले। बाप का घर में आना ऐसे लगता था थानेदार कोई आ गया, कितना रोब था। ये कुर्सी अब्बू की है, डाइनिंग टेबल पे बैठना, ये कुर्सी पे अब्बू बैठेंगे, बच्चे नहीं बैठते थे। जब तक बाप खाना ना डाले बच्चे हाथ नहीं बढ़ाते थे, है ना। आज क्या हो गया, बाप के कंधों पे बैठे हुए बच्चे होते हैं कि बड़े होते हैं। आज हम मुसलमानों ने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। नतीजा क्या निकला कि बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब। टीचर्स का अदब कहाँ है, उस्तादों की इज्जत कहाँ है। अपने स्कूल के टीचर्स को तो देखिए बुली करते हैं बच्चे, चलें कोई दीन सिखाने वाले को तो मौलवी साहब या कुछ उस्तानी साहब कह ही देंगे, दुनिया सिखाने वालों को क्या कहते हैं। तो अपने बच्चों को अपने अदब सिखाने हैं, खुद भी सीखना है, अगर कमी है तो उसको दूर करने की जरूरत है। बड़े छोटे का अदब है, बड़े से आगे ना निकलो, उससे पहले ना बैठो, उससे नरम बात करो। और जिन माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वला तनहर हुमा, और उनको झिड़को नहीं, वला तकुल लहुमा ओफ, तुम उनके सामने ओफ भी ना कहो। क्यों कि ओफ की भूख से तुम्हारे माँ बाप के दिल के अंदर जो चिराग जल रहा है ना वो बुझ जाएगा। अल्लाह तो माँ बाप के सामने बैठने का तरीका सिखाता है कि वख्फिज़ लहुमा जनाह मिनज़ ज़ुल्ली, जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, कि उनके आगे अपनी जिल्लत के बाजू ऐसे दबा लो कि जैसे परिंदा उड़ने से पहले पर समेटता है, तुम अपने माँ बाप के सामने यूं बैठो। क्योंकि जिनको ऊंचा उड़ना है वो माँ बाप के आगे झुकते हैं, फिर ही अल्लाह उनको ऊंची परवान देता है। दिन ब दिन हमारे घरों के हालात क्या हो रहे हैं, बच्चों ने एक तूफान बदतमीजी क्यों उठाया होता है। हमसे 6 गुना छोटा बच्चा कद के एतबार से कह ले, हमारे ही बस में क्यों नहीं। इसमें हमारी तरबियत का अंदाज है, माँ के अंदर सुकून नहीं है बच्चे में नहीं आएगा। फिर खुराक, फिर बच्चे को खिलाना पिलाना, उसका माहौल, जो कपड़े पहनाए शैतान तो और गुदगुदाता होगा। तो लिहाजा हमने बच्चों को भी दीन सिखाना है, अदब सिखाना है, और खुद भी सीखना है। आप छोड़िए, ये तो घर की बातें। मैंने आज लोग देखा है कि मजहबी रहनुमाओं को लोग बुरा भला कह रहे होते हैं, और एक मजहबी रहनुमा दूसरे फिरके वालों को मिंबर पे बैठा बातें कर रहा होता है। ये तो दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। देखिए, सहाबा के बीच में कुछ मौके पे गलत फहमियों की बुनियाद पर जंगे तक हो गई। हजरत अली और हजरत माविया का नाम मालूम है? उस दौर के बादशाह ने हजरत माविया को खत लिखा कि छोड़ो अली को, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यानी ऐसे ही जैसे आज मुसलमान मुल्कों को लड़ाने के लिए नॉन मुस्लिम बीच में सालिस बन के पेश हो जाए। हजरत अली से कहा कि आ जाओ, यानी एक को दूसरे के खिलाफ का। उसने फौरन उसकी आंखों में आंखें डाली, या जैसे भी उसको कहा, कहा देखो खबरदार, ये हमारा आपस का मामला है, अगर तुमने अली को कुछ कहा तो मैं अली की तरफ से लड़ने वालों में सबसे आगे होऊंगा। कहा करते थे आपस में, कहते थे हमारा मामला देखना जाके जन्नत के बाहर नहर का पानी पीकर होगा। अल्लाह हमारे दिलों के गील और कीने दूर करेगा। सूरत अल अराफ में आता है ना कि वह नजाना, और हम खींच लेंगे मिन गिल्लिन, उनके दिलों के कीने को। हर सहाबी दूसरे को जन्नती कहता था, कहते थे हैं वो जन्नती, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, नो प्रॉब्लम, हम उनके इस्लाम पे शक नहीं करते। आज हाल ये हो गया, हम कहते हैं हाँ मुसलमानों से तो काफिर अच्छे। यकीन करें, आज जिस फिरका वारियत ने हमें तोड़ के रख दिया ना, उसकी वजह पता क्या है? कि हम इस किताब से दूर है। मैं सिर्फ आपके सामने आयत पढ़ रही हूँ, ये मेरे लफ्ज नहीं है। आप किसी कुरान से घर जाके इसको चेक कर ले, अपने लफ्जों में बोल रही हूँ, है कुरान। आज अगर आप चाहती हैं ना कि उम्मत जुड़े, फिरका वारियत खत्म, सबसे पहले मुसलमानों से अपने दिल साफ करें, कहें कि जो भी है तो मुसलमान ना। और मजे की बात देखिए, लोग करप्शन में पड़े हुए हैं, फिल्में बनाए, अखलाक को खराब करने वाले नॉवल लिखे, ड्रामे लिखे, कोई कुछ नहीं कहता। जहां कोई दीन का काम करने लगता है तो कहते हैं इससे बड़ा कोई मुनाफा की नहीं है, उसकी ना सुनना उधर ना जाना, ये तुम्हें बौरला देगा। इस साल रमजान में हम आपको एक दावत देंगे इंशाल्लाह, अभी एंड पे सिस्टर्स बताएंगी। अगर आप सब ने अभी तक कुरान को इस तरह नहीं पढ़ा कि वो आपको अपनी किताब लगे, तो इंशाल्लाह एक मौका हमारे सबके पास आया। मैं तो सोचती हूँ कि जितने दूर हैं, अगर उधर से एक एक वैन या बस, कोई ऐसी भी कलेक्टिव ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए, तो आप सारे मिल के भी आ सकते हैं। अगर आप दूर हैं, क्या आप इल्म हासिल करने के लिए 30-40 मिनट की ड्राइव कर सकते हैं? आपके बच्चे कितनी दूर दूर जाते हैं यूनिवर्सिटी से? मुझे यहाँ का नहीं पता, मुझे ह्यूस्टन का पता है। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी जो है वो जहाँ हम लोग रहते थे वहां से कम हो बेश 1 घंटा तो, और अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो चाहे 2 घंटे। तो हमारे अपने ही घरों में कईयों की बच्चियां बच्चे रोज जाते थे, रोज आते थे। तो ऑस्टन यूनिवर्सिटी में, डलस में, अर्विंग में गए, और जिसको जितनी दूर दाखिला मिलता उतना खुश होते हैं कि बच्चे को दूर दाखिला मिला। क्या अच्छा, इल्म हासिल करने के लिए 30-35 मिनट दूर नहीं जा सकते? सेल लगे तो हम पता नहीं दूसरे कोने में पहुंच जाए। तो नियत कीजिए, ये बड़ा प्यारा कुरान है। आप सोचेंगे मैं कोई बात कर रही हूँ, लेकिन यकीन करें ये अल्लाह का कुरान पढ़ा रही हूँ आपको। कुरान बड़ा प्यारा है। आज जिस वजह से मेरी उम्मत टूट गई ना, उसकी वजह ये कि आम लोगों को, मेरे और आप जैसों को, कुरान के ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता। बीच में ही रोक लिए जाते, कहते ये उलमा के पढ़ने की बात है, ये औरतें कहाँ पढ़ें, ये आम पढ़े, आम लोग कैसे पढ़े। हालांकि आपको पता है कि मक्का के लोग तो अनपढ़ थे। अल्लाह के नबी की बीवियां जो कुरान की आयतें उतरती थी उसको आपसे सीखती और बाद में दूसरी औरतों को सिखाती। तो लिहाजा इस साल हमने इंशाल्लाह रमजान को कुरान का महीना बनाना है, तो फिर ये सारी बातें आप खुद भी पढ़ेंगे। तो ये तो एक लंबा सफर होगा, लेकिन इंशाल्लाह जब हम रमजान में दौरे कुरान में पूरे कुरान से गुजरेंगे, क्या आपको तजस्सुस नहीं आता, कोई सस्पेंस नहीं आता कि इस बुक में है क्या? देखिए कोई गिफ्ट देता है ना तो आप कहते हैं पता नहीं अंदर क्या होगा, कितनी तहों में छुपा के रखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही देखना कि हमने दिया है। अल्लाह ने भी तो ये गिफ्ट दिया ना। आप अपनी उम्र सोचें, माशाल्लाह हर एक की उम्र कमो बेश जो भी है, इतने साल गुजर गए और मैंने इस एक किताब को तर्जमे से पढ़ा ही नहीं है। सादा तो बहुत दफा पढ़ा होगा माशाल्लाह, लेकिन ये देखिए ये आपके सामने 5 हकूक लिखे हुए हैं। ये है मोटो हमारी क्लासेस का, कुरान के ये 5 हकूक अदा करने के काबिल हो जाएं। इस पर ईमान, इसको ठीक तरह से पढ़ना, फिर इसको समझना, गौर करना, तर्जमा इसका जानना, फिर उस पे अमल, और उसकी फिर तबलीग दूसरों तक पहुंचाना। इन पांच सीढ़ियों में से खुद को पूछ लीजिए कि मैं किस सीढ़ी पे खड़ी हूं। तो कोई बात नहीं, अभी जिंदा है इंशाल्लाह, मौका दे अल्लाह ने। इतने प्यार से अल्लाह ने आपको बनाया जितने प्यार से किसी आलिम को बनाया। आप आज अगर अपनी जिंदगी का सफर शुरू करें ना कुरान और ईमान वाली, तो आप उनमें से बहुत सारे लोगों से अभी भी उम्र में छोटी हैं जिन्होंने नबी सल्लम की जुबान मुबारक से कुरान सुना तो 40-50 साल के थे। खुद नबी सल्लम पहली वही के वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? तो फिर अगर आप में से कोई 40 किया तो इट्स नॉट टू लेट। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तो इंशाल्लाह हमने इस कुरान से ताल्लुक जोड़ना। नियत करते इंशाल्लाह ताला। अगला हुक्म इस सूरत का जिससे मेरा और आपका अखलाक अच्छा होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन। ए ईमान वालों, और देखिए बार बार अल्लाह आपको पुकार रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आप अपने बच्चे का नाम ले ना तो खेल भी रहा होगा ना तो उसके कान खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारा इस कुरान को सुनकर दिल दमाग हाजिर कमी होता है। क्या कहा? अगर आ जाए तुम्हारे पास फासिक, फासिक कहते हैं गुनाहगार को, झूठा शख्स, बिना बाइन किसी खबर के साथ, तो क्या करो? फतबैनो, तो तहकीक कर लिया करो, क्योंकि अंतुसीब कौमम बिजहालतिन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पहुंचा दो किसी कौम को जहालत के साथ, यानी नुकसान। फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, बस तुम हो जाओ उस पर जो तुम कर चुके परेशान। एक और हमें खूबसूरत अदब सिखाया गया कि अफवाहों पे कान न धरो, सुनी सुनाई बातें इधर से उधर ना करो। अमूमन हम क्या कहते हैं, तुम्हें पता उसने क्या कहा, उधर क्या है उधर क्या, और हम उल्टी सीधी बातें इस तरह की करते हैं। और यहाँ खास तौर पे ये आयत जो है वलीद बिन उकबा के बारे में, वो कौन थे आपको मुझे इतना इस वक्त जरूरत नहीं उसके जानने की, लेकिन हुआ यह था कि कबीला था एक बनु मुस्तलक, वो मुसलमान हो गया। नबी सल्लम ने वलीद बिन उकबा को भेजा कि जाएं उन लोगों से जकात वसूल करें। ये जब उनके इलाके में गए तो वो लोग डर गए, ऐसे ही डर गए, कोई भी वजह हुई उनसे डरे या उनसे डरे, और अहले कबीला से मिले बगैर वापस मदीना आ गए। और आके अल्लाह के नबी से कहा कि उन्होंने तो जकात देने से इनकार कर दिया, बल्कि वो तो मुझे कत्ल करने लगे थे। अब ये बड़ी बात थी कि एक शख्स नबी का भेजा हुआ उसको कत्ल करने लगे, अल्लाह के नबी नाराज हुए। आपने इरादा किया कि इन लोगों की तरफ एक दस्ता भेजें और जाके उनको पूछें भाई क्या मामला तुम्हारा। और बाज रिवायत में यहां तक आता कि आपने एक लश्कर भेज भी दिया, लेकिन आपको पता है कि बनु मुस्तलक कबीला जो था अल्लाह के नबी की बीवी हजरत जुवेरिया के खानदान था, और उनमें से इस तरह की बातें उनमें से एक शख्स नबी सल्लम के पास आ गया, कहा क्या हुआ, कहा ये हुआ, कहते हमने तो उसको देखा भी नहीं वलीद को, पता क्या चला, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बात समझ रहे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे, एक गलत खबर पे अल्लाह के नबी एक मुसलमान कबीले पर हमला करने के लिए जा रहे थे कि अल्लाह ने बीच में रोक दिया कि नबी कोई एक्शन लेने से पहले तहकीक कर लो कि बात सच है कि नहीं। चलिए ये तो उनका वाकया था, हम जरा अपना तो देखें। अमूमन हम क्या करते हैं, हमारा इस बारे में क्या ताल्लुक है? क्या हम सुनी अनसुनी फौरन चल पड़ते हैं? हदीस में आता है कफा बिल मरई कजीबा, किसी बंदे के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। देखिए इंसान और तोते में फर्क तो होना ही चाहिए ना, और अमूमन हम औरतों में आदत आम होती है। खुद से पूछें, ये भी एक हमारा अपने लिए एक सवाल है, कोई बात सुनती हूं तो उसके फौरन बाद क्या करती हूं? सच कहा कि हम फोन उठाते हैं, सुना कुछ तुमने, और उस वक्त हमें लगता है असाबिकून अलवलून, पायनियर हम होंगे, मैंने ये खबर दी, और बाद में बड़े मान से औरतें चीख रही थी मैंने बताया था तुम्हें सबसे पहले। तो आप ही वार्ड ले लीजिए भाई, आप फर्स्ट आ जाएं, आप विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हो जाएं, हमें क्या जाते है? लेकिन नफ्स है ना, मैंने बताया मैंने कहा, हालांकि आपको पता है वो खबर सच्ची है कि झूठी है। कभी भी बात आगे ना करें, इससे गलत फहमियां भी आती हैं और आपकी नेकियां जाया होने का डर है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि देखो बाद में शर्मिंदगी होगी। फिर मैंने देखा ऐसे लोग अक्सर सफाइयां पेश करते रहते हैं, वो सच्ची ये नीयत नहीं थी, ये इरादा नहीं था, वो नहीं था, दिस एंड दैट। तो क्या पता चला कि हमें क्या करना है, बात की खबर लें। अच्छा अब इसमें क्या होता है, मोमन देखिए अखबारों की खबरें झूठी सच्ची, आज एक बयान है तो कल दूसरा बयान है, फिर इसी तरह से कुछ और खानदानी बातें। एक ना सौ सुख। अभी चंद दिन पहले भी मैंने इसी बात पे दर्श दिया, खामोश रहना बोलने से बेहतर है। कब बोलो? जब तुम्हारे पास खामोशी से खूबसूरत लफ्ज हो। अब आगे आप देखेंगे कि बात ही जुबान की होने लग जाएगी। लेकिन आपकी मेरी बात, खानदानी जिंदगी में ये बहुत तफावत है, और खास तौर पर सास बहू में तो पता नहीं क्यों होता है। खाम खा के वहम और शक। और अगर आपको कोई कह दे कि आपकी नन ने आपके मियाँ के कान भरे हैं, तो पहले जाके चेक कर लें, फिर लड़ाई डालें घर में। जी क्या कह रहे हैं? कौन चेक करता है? मुश्किल में फंसेंगे, लेकिन वहां की मुश्किल से बच जाएंगे ना। वालमु अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, और जान लो तुम्हारे बीच में अल्लाह का रसूल है। क्या वो दौर था कि जब अल्लाह के नबी वहां मौजूद थे। लो युतीउकुम, अगर वो इताअत करें तुम्हारी, यानी तुम्हारी बात मान लें, फी कसीर मिन अल अम्री, बहुत सारी बातों में, तुम तो मुश्किल में पड़ जाओ। वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुम अल ईमान, लेकिन अल्लाह ने महबूब बना दिया तुम्हारे लिए ईमान को। वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिल को मुज़य्यन कर दिया। वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र, और उसने नापसंद किया तुम्हारे लिए कुफर को। वल फुसूक, और नाफरमानी। वल इस्यान, और गुना की बात को। औलाइक हुमुर राशिदून, ये हैं फलाह पाने वाले लोग। क्या है इनके लिए? फजल मिन अल्लाह, अल्लाह का फजल। व नेमा, और नेमत। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला खूब इल्म वाला हिकमत वाला। इन आयतों में बहुत ही खूबसूरत नेमतों का जिक्र है। पहली बात ये कि ईमान तुम्हारे दिल की जीनत है। देखिए, जैसे हमारा जाहिर कपड़ों से संवरता है ना, हमारा जिस्म क्या है? गोश्त का एक ढेर है। कपड़े पहन लेते हैं तो अच्छे लग जाते हैं। जिस तरह जाहरी जिस्म को कपड़े खूबसूरत कर देते हैं ना, इसी तरह ईमान हमारे दिल को खूबसूरत कर देता है। या अभी तक जितनी बातें पढ़ी हैं, और स्पेशली अब जो आगे आने वाली हैं, इसमें अमल कब होगा? जब ईमान अंदर होगा। अंदर ईमान आता है, इंसान का दिल खूबसूरत होता है। देखिए, आप अपने घर में किस चीज को सजाते हैं? ड्राइंग रूम को। क्यों? मेहमानों की जगह ना। तो जिसने अपने दिल में अल्लाह को मेहमान बनाना होता है, वो दिल को गंदा नहीं करता, दिल को साफ करके बैठता है।